नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मतदाता सूची संशोधन पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए और राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, विपक्ष संसद को बाधित करने के लिए मुद्दे ढूंढ रहा है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 2,208 मतदान केंद्रों पर शत प्रतिशत गणना प्रपत्र जमा करने के बारे में स्पष्टीकरण मांगा। काशी तमिल संगम का 4वां संस्करण आज शाम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक भव्य समारोह के साथ शुरू होगा। और चक्रवाती तूफान दितवा का गहरा दबाव क्षेत्र कमजोर पड़ गया है। चेन्नई, तिरुवल्लुर, चेंगलपट्टू और कांचीपुरम जिलों में अगले 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हो रही है। लोकसभा दिनभर के लिए और राज्यसभा दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही पहले 12 बजे, फिर दोपहर 2 बजे और फिर दिनभर के लिए स्थगित की गई। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष के सदस्य आसन के करीब आकर अपनी मांग पर अड़े रहे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी सांसदों से सदन की कार्यवाही बाधित न करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार सदन में किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है।
लोकतंत्र में चुनाव का प्लेटफॉर्म जनता का बीच होता है। ये कल भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि यह बिजनेस तैयार किया गया है, हम लोग चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन एक बात तो हम लोग औपचारिक मिलना तो चाहिए। ये टाइम बताते कि अभी बताओ कब से होगा, ऐसा कोई तरीका नहीं होता है।
राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखी गई। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। आज सुबह कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने जॉर्जिया के संसदीय प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत किया। सदन में शून्यकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने एसआईआर और अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार ने विपक्ष से सदन में सुचारू रूप से कार्यवाही और चर्चा का बार बार अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष के साथ उनके मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एसआईआर एक महत्वपूर्ण मामला है और उन्होंने इस पर तत्काल चर्चा की मांग की। विपक्ष के हंगामा जारी रहने पर उच्च सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष को नए मुद्दे ढूंढने और संसद को बाधित करने की आवश्यकता नहीं है।
विंटर सेशन पार्लियामेंट में बिजनेस तय किया गया है, बहुत सारा मुद्दे हैं और कई मुद्दे जो ऑपोजिशन ने भी उठाया है उस पर हम बातचीत करके आगे क्या करना है इस पर विचार करेंगे। नए नए मुद्दे ढूंढ करके पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करने के लिए बहाना बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है। हर मुद्दे अपने जगह में इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुद्दे को आप हथियार बना करके पार्लियामेंट को स्टॉल करेंगे ये तो ठीक नहीं है।
और जानकारी के लिए बात करते हैं संसद परिसर में मौजूद हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र से। अनुपम, संसद में आज क्या गतिविधियां रही?
जी कनक, लोकसभा और राज्यसभा में आज भी एसआईआर का मुद्दा छाया रहा, जिसकी वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हुई है। लोकसभा पहले 12 बजे तक के लिए और फिर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा बार बार किए गए अपील के बावजूद विपक्षी सदस्य सदन के बीचों बीच आकर अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका, हालांकि लोकसभा में केवल 2 ही प्रश्न उठा जा पाए। किरेन रिजिजू ने कहा कि एसआईआर के अलावा कई और मुद्दे भी हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियां एक ही मुद्दों पर चर्चा के लिए अड़ी है। उन्होंने कहा कि कई अन्य दल सदन में अपने महत्वपूर्ण मुद्दे उठाना चाहते हैं, लेकिन सदन के बाधित होने के कारण उन्हें मौका नहीं मिल रहा है। 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद पक्ष ने फिर हंगामा किया, जिसके कारण पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी है। अभी राज्यसभा में मणिपुर वस्तु और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा चल रही है और विपक्ष ने अपना मुद्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन अभी उसने वॉकआउट कर लिया है। जी कनक,
जानकारी के लिए धन्यवाद अनुपम। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर प्रेम कुमार 18वीं बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज सर्वसम्मति से उनके चुने जाने की घोषणा की। डॉक्टर प्रेम कुमार गया टाउन विधानसभा सीट से 9वीं बार विधायक चुने गए हैं। वे कई बार मंत्री पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 2,208 मतदान केंद्रों पर शत प्रतिशत गणना प्रपत्र जमा करने के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक रूप से प्रेरित कुछ प्रखंड विकास अधिकारी बूथ लेवल अधिकारी पर अपने OTP साझा करने का दबाव बना रहे हैं, ताकि मृतकों, विस्थापितों और अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के नाम मतदाता सूची के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल किए जा सकें। आयोग के विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए जनता, राजनीतिक दलों और संगठनों के साथ परामर्श शुरू कर दिया है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद के लिए जारी खींचतान के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज बंगलुरु में उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार से उनके आवास पर मिले। बैठक के बाद श्री सिद्धारमैया ने संवाददाताओं से कहा कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन और मंत्रिमंडल में फेरबदल पर पार्टी नेता राहुल गांधी निर्णय लेंगे। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक की जनता ने उन्हें भारी जनादेश दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आदेश का पालन किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि अर्थव्यवस्था के बढ़ते डिजिटलीकरण और नए वित्तीय उत्पादों के आने से दुनिया भर के देशों को कर प्रणाली में निष्पक्षता और जनता का विश्वास सुनिश्चित करते हुए सूचनाओं के समय पर आदान प्रदान में सहयोग करना होगा। नई दिल्ली में आज ग्लोबल फोरम की 18वीं पूर्ण बैठक को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने ये बात कही। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि साइबर धोखाधड़ी के लिए दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने और साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचार साथी ऐप लाया गया है। श्री सिंधिया ने संसद भवन के बाहर पत्रकारों से कहा कि इस ऐप को कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपने मोबाइल फोन से हटा सकता है।
ये कस्टमर प्रोटेक्शन की बात है और हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई मैंडेटरी नहीं है, आप अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते हो, मतलब कि उदाहरण के तौर पे इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते हो, तो रजिस्टर मत करो, वो डोरमेंट रहेगा। डिलीट करना है तो डिलीट कर लो, पर हर व्यक्ति को देश में नहीं मालूम कि मुझे फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे चोरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐप है। तो हर व्यक्ति तक ये ऐप पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है।
नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आक्रामक रुख और कैरियर बैटल ग्रुप की तत्काल तैनाती से पाकिस्तानी नौसेना को अपने बंदरगाहों तक ही सीमित रहना पड़ा। आज हुए वार्षिक संवाददाता सम्मेलन में श्री त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है और ये भारत की प्रतिबद्धता, तत्परता और प्रतिरोधक क्षमता का परिचायक है।
सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर ही नहीं, बल्कि हमारा कोई भी ऑपरेशन या अभ्यास, जैसे कि बनियल, थिएटर लेवल ऑपरेशन, एक्सरसाइज ट्रॉपिक्स, हम इन सभी से सबक सीखते हैं, चाहे वो बल संरचना हो, संचालन हो या तकनीक हो। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर भी इससे अलग नहीं था। हमने नौसेना मुख्यालय में एक टास्क फोर्स का गठन किया है जो कूटनीति से लेकर सेंसर उपकरणों के प्रदर्शन तक सभी पहलुओं पर नजर रखेगी और ये समझेगी कि भविष्य में क्या बेहतर किया जा सकता है। ये प्रक्रिया जारी है क्योंकि ऑपरेशन अब भी चल रहा है।
केंद्र सरकार ने PM किसान योजना की शुरुआत से अब तक 21 किस्तों के माध्यम से 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का वितरण किया है। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 6,000 रुपए का वित्तीय लाभ 3 समान किस्तों में हस्तांतरित किया जाता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA के अंतर्गत एक मामले में चार्टर्ड अकाउंटेंट नरेश केजरीवाल के रांची, मुंबई और सूरत स्थित 15 विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। FEMA के तहत झारखंड में निदेशालय की पहली छापेमारी है। केजरीवाल के खिलाफ आयकर विभाग द्वारा की गई छापेमारी के दौरान मिले तथ्यों के आधार पर FEMA के तहत इस मामले में जांच शुरू की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। चौथा काशी तमिल संगमम आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुरू हो रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भव्य उद्घाटन समारोह आज शाम नमो घाट पर आयोजित होगा।
इस बार के काशी तमिल संगमम 4.0 का मूल मंत्र है आइए तमिल सीखें, यानी तमिल कर कलम। ये संस्करण तमिल भाषा सीखने की भावना को केंद्र में रखता है और इस विश्वास को आगे बढ़ाता है कि सभी भारतीय भाषाएं एक साझा भारतीय भाषा परिवार का हिस्सा हैं। उद्घाटन समारोह में काशी और तमिलनाडु के पारंपरिक कलाकार एक साथ मंच पर प्रस्तुति देकर विविधतापूर्ण भारतीय संस्कृति का अद्भुत संगम प्रदर्शित करेंगे। काशी में होने वाले इस आयोजन में 1400 से ज्यादा प्रतिनिधि तमिलनाडु से शामिल होंगे। इनमें छात्र, शिक्षक, लेखक और मीडिया पेशेवर, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लोग और कारीगर, महिलाएं और आध्यात्मिक विद्वान शामिल हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायक से कल टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने चक्रवात देतवा से प्रभावित लोगों के बचाव और उन्हें राहत प्रदान करने के ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत श्रीलंका को लगातार मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि भारत अपनी महासागर परिकल्पना और सबसे पहले सहायता प्रदाता की स्थिति के अनुरूप श्रीलंका को हर संभव सहायता देगा। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति दिसानायक ने भारत के प्रति आभार व्यक्त किया। श्रीलंका में चक्रवात देतवा के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या 410 हो गई है, जबकि 336 लोग अब भी लापता हैं। आपदा प्रबंधन केंद्र के अनुसार इस आपदा ने सभी 25 जिलों के 14,60,000 से अधिक लोगों को प्रभावित किया है। ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत भारतीय वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर ने चक्रवात देतवा से सबसे अधिक प्रभावित मंदारम नुवारा इलाके में 2000 किलोग्राम आवश्यक राहत सामग्री सफलतापूर्वक पहुंचाई है। एक समन्वित मिशन के अंतर्गत 24 यात्रियों को कोटमाले से कोलंबो के लिए एयरलिफ्ट किया गया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की टीमें केलानी नदी के पास बाढ़ प्रभावित सेड्डावट्टे तथा भूस्खलन प्रभावित बादुल्ला में तलाश और बचाव कार्य जारी रखे हुए हैं। चक्रवाती तूफान देतवा के आज और कमजोर होकर दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। ये चक्रवात बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम और आसपास के क्षेत्रों तथा उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तट पर है। मौसम विभाग ने चेन्नई, तिरुवल्लूर, चेंगलपट्टू और कांचीपुरम जिलों में अगले 24 घंटे के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। चेन्नई, एर्नोर, कट्टुपल्ली, पुदुचेरी, कडलूर, नागपट्टिनम और कारैक्कल बंदरगाहों पर तीसरे स्तर की चेतावनी जारी की गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज असम दिवस के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह दिन अहोम युग के गौरव की याद दिलाता है, जो हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। पुरुष जूनियर विश्व कप के नॉकआउट चरण से पूर्व अंतिम ग्रुप लीग मुकाबले में आज भारत का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। ये मैच तमिलनाडु के मदुरई में रात 8 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार सेंसेक्स और निफ्टी 0.5% की गिरावट के साथ दोपहर में कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 464 अंक की गिरावट के साथ 25,178 पर और निफ्टी 140 अंक की गिरावट के साथ 26,036 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मतदाता सूची संशोधन पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित, लोकसभा दिनभर के लिए स्थगित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, विपक्ष संसद को बाधित करने के मुद्दे ढूंढ रहा है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 2,208 मतदान केंद्रों पर शत प्रतिशत गणना प्रपत्र जमा करने के बारे में स्पष्टीकरण मांगा। काशी तमिल संगम का चौथा संस्करण आज शाम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक भव्य समारोह के साथ शुरू होगा। और चक्रवाती तूफान देतवा का गहरा दबाव क्षेत्र कमजोर पड़ गया है। चेन्नई, तिरुवल्लूर, चेंगलपट्टू और कांचीपुरम जिलों में अगले 24 घंटे के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।